दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समात फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज़ को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समात फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हरगिज मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवीए उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, आज बुध है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकते हैं नगमा सहर और अदब खजाना। दोस्तों, ये प्रोग्राम फादर कैसर फेरोज की ज़ेर निगरानी तैयार किए गए हैं, तो आइए समाप्त फरमाइए आज के प्रोग्राम।
हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका पहला बाब 45 से 51 आयत तक। एक दिन फिलिप्पुस को नतनेल मिला और उसने उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और अंबिया ने भी किया है, हमने उससे पा लिया, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, आ देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो एक हकीकी इसराइली, इसमें मकर नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, इससे पहले के फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनेल ने उसको जवाब दिया कि रब्बी, तू खुदा का बेटा, तू इसराइल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, क्या तू इसलिए ईमान लाता है कि मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा? तू इससे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इतने इंसान पर उतरते देखोगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि नतनेल को ये जानकर ताजुब हुआ कि यीशु ने उसके बातन में झांक कर देखा है। वो पुराने अहदनामे के मयार का ईमानदार था, क्योंकि उसने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के आगे अपने गुनाहों का इकरार किया था और नहायत खलूस दिल से खुदा की बादशाही का खाहा था। ये खुद सास रास्तबाजी न थी, बल्कि उन लोगों का रवैया था जो अपने गुनाहों के बायस शिकस्ता दिल होकर खुदा से दरख्वास्त कर रहे थे कि वो मसीह को भेजे ताकि उन्हें निजात मिले। यीशु ने ये दुआ सुनी और दुआगो को कुछ दूर एक दरख्त के साय में देखा, जहां वो सर झुकाए हुए था, सजदा किए हुए था। मसीह ने उसे मुस्तरद नहीं किया, बल्कि उसे पुराने अहदनामे के मुताबिक असली ईमानदार की मिसाल करार देकर रास्तबाज ठहराया, जो मसीह की आमद का मंतजर था। मसीह की हुई तारीफ के बायस नतनेल के तमाम शुभात दूर हो गए। उसने मसीह के आगे सर तस्लीम खम किया और किताब मुकद्दस में मसीह के लिए बयान किए हुए इन अलकाब से आपको मुखातिब किया, मसीह खुदा का बेटा और इसराइल का बादशाह। जब नतनेल ने ये अल्फाज कहे, तब उसकी जान खतरे में पड़ गई होगी, کیونکہ شریعت کے عالم اور یہودیوں کی عدالت عالیہ کے اراکین یہ نہ مانتے تھے کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے۔ کسی بھی ابتدائی شاگرد نے مسیح کو ایسے نام نہ دیے جیسے نتنیل نے دیے تھے۔ تعجب اس بات کا ہے کہ مسیح نے ان میں سے کسی بھی خطاب کو مسترد نہیں کیا، بلکہ آسمان کو کھلا ہوا بتا کر نتنیل کی واقفیت میں اضافہ کیا۔ یسوع نے نتنیل سے یہ نہ کہا کہ میں موت بادشاہ یا خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ اس نے اپنے آپ کو ابن آدم کہا۔ نتنیل نے اب یہ جان لیا تھا کہ یسوع صرف بادشاہ یا بیٹا ہی نہیں بلکہ سارے جہاں کا منصف بھی ہے۔ وہ انسان کی شکل میں ہمارے درمیان آیا ہے، لہذا یسوع نے غمگین ایماندار کو ایمان کی سب سے اعلیٰ سطح پر پہنچا دیا۔ یسوع چونکہ دیہاتی علاقے کا نوجوان تھا، لہذا ایسے شخص پر ایمان لانا آسان بات نہ تھی، لیکن شاگردوں نے ایمان کے وسیلے سے اور اوپر آسمان کے کھلنے سے یسوع میں پوشیدہ جلال کو دیکھا۔ اے خدا کے بیٹے اور سارے جہاں کے منصف، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم غضب کے سوا اور کسی چیز کے مستحق نہیں، لیکن ہم تیرے فضل کے طفیل سے معافی طلب کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے لیے رحم کی درخواست کرتے ہیں۔ ان سب لوگوں پر اپنی برکتیں برسا جو خدا کے طلبگار ہیں، تاکہ وہ تجھے دیکھیں، تجھے جانیں اور تجھ سے محبت کریں، تجھ پر اعتقاد رکھیں اور علم اور امید میں بڑھتے چلے جائیں۔ آمین۔
سامعین، پروگرام پیش خدمت ہے ادب خزانہ۔ حاضر خدمت ہیں آپ کے دوست، آپ کے میزبان یونس سنی اور عامر سہیل۔ ہماری جانب سے ہمارا بہت ہی عقیدت بھرا سلام اور ہماری ڈھیروں دعائیں قبول کیجیے۔
سامعین، ہماری تو یہی دعا ہے کہ خداوند تعالی ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی اچھوتی داستان سے، جس میں شکوے ہیں اور توقعات ہیں، اور یہ ایک غریب آدمی کا ماجرا ہے اور وہ اپنے دل کی غربت سے بھی آگانا تھا۔ تحریر ہے اشفاق قریشی کی۔ آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں اور اس داستان کا عنوان ہے آئینہ۔
سماعت فرمائیے۔ شام ڈھلنے کا سوچ رہی تھی، ہوا بھی کسی کھوج میں گم تھی۔ میں گھر سے مغرب کی نماز کے لیے نکلا تھا۔ چونکہ ابھی وقت نے انگڑائی لینے کو ہاتھ نہ اٹھائے تھے، اس لیے میں تسبیح ہاتھ میں لیے ورد کرتا ہوا قریبی باغیچے کی طرف نکل آیا تھا۔ ایک جگہ میں سڑک کے کنارے چلتے چلتے ذرا رکا اور تچھی نظروں سے بائیں جانب دیکھا۔ وہاں لڑکے کرکٹ کی نیٹ پریکٹس کر رہے تھے۔ میں رخ موڑ کر بیٹنگ کرتے ہوئے لڑکے کی مہارت کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری بائیں جانب سے سڑک کے کنارے کوئی لہراتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے پوری توجہ سے دیکھا تو ایک آدمی کٹی پتنگ کی طرح جھپ کھا کر میرے قریب آ گیا اور زردی مائل دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ پہلے خیال نے سرگوشی کی کہ شاید یہ نیم دیوانہ اور کچھ طلب کرنے کو ہے۔ میں نے اس کی مٹیالی رنگت کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہاں کسی طور بے ترتیبی کے آثار نہ تھے۔ اس کے بال بہت چھوٹے تھے، مجھے وہ بھی مٹیالے لگے۔ لباس بھی مٹیالا، ہاتھ بھی مٹیالے، بازو بھی مٹیالے۔ مجھے یوں لگا کہ ایک مٹیالا مجسمہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ میری سوالیہ نظروں کے جواب میں اس نے اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی ڈبیا مجھے دکھائی اور لہرا کر کہا۔
میں نے سوچا کہ کسی سے پوچھ لینا اچھی بات ہے۔ کہو کیا بات ہے؟ کیا بازو میں درد ہے؟ اس نے بایاں بازو دبایا ہوا تھا۔ میں نے اس کے دبلے سے مٹیالے بازو پر نگاہ ڈالی اور بےتابی سے گہرا سانس لیا کہ اب یہ مطلب کی بات کرے اور جائے۔ اس نے شاید میری بےتابی بھانپ لی۔ مسکراہٹ اس کی نظروں سے جھانکنے لگی۔ میں نے آپ جیسے ایک سیانے سے بات کی تو اس نے مجھے یہ دوا لگانے کو دی ہے۔ اس نے ڈبیا پھر میرے سامنے کی۔ تو پھر اور کیا چاہیے؟ میں نے بھی اسے مسکراہٹ کی بھیک دے ڈالی۔ میں نے سوچا کسی اور سیانے کو دکھا لوں۔ میں نے ڈبیا پکڑی اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہ مرہم مجھے آئیوڈیکس جیسی لگی۔ میں نے جانا کہ یہ درد کے لیے ہی ہوگی۔ میں اب کیا کہوں؟ میں نے سوچا خدا کسی کو بے بس نہ کرے کہ وہ تنہائی کے زندہ میں پھنس جائے اور دیواروں سے باتیں کرنے لگے۔ मैंने उसकी तसल्ली की खातिर तवाना लहजे में कहा, ये दवा बिल्कुल ठीक है, सुबह शाम लगाओ ठीक हो जाओगे। बस जी, मैंने यही पूछना था। उसने मुस्कुराते हुए डिबिया पकड़ी और लहराती चाल के साथ आगे निकल गया।
दो दिन बाद शाम की उसी कैफियत में मैं उसी बागीचे में टहल रहा था। तस्बीह पे विर्द भी जारी था और क्रिकेट की प्रैक्टिस पे नजर भी थी। एक तरफ झूलों पर बच्चों के झुरमट थे, खाली जगह में एक महदूद दायरे में रहते हुए चंद लड़के फुटबॉल भी खेल रहे थे। बेंचों पर बैठे लोग रौनके बज्म से बहले हुए थे। उस हंगामे से बेनियाज सूरज आहिस्तगी से डल रहा था, रोशनी सिमट रही थी। ताहा मेरी नजरों की आवार की अभी सिमटी ना थी। मेरी नजर बागीचे के ट्यूबवेल की तरफ लगी तो मुझे वो मटियाला मुजस्मा दिखाई दिया। वो वहां बरकी कूलर से ठंडा पानी एक बर्तन में भर रहा था। पानी लेकर वो वहां ना ठहरा और लहराता हुआ अगले गेट की तरफ चला गया, जैसे रॉन के बज्म से उसे कोई मतलब ना हो, जैसे उसके लिए वहां कोई दिल बहलाने की चीज ना हो, या जैसे उस पे कोई पाबंदी हो कि खबरदार रुकना नहीं, पानी लो और पलट आओ।
चंद अगले रोज भी मैंने उस पर नजर रखी। उसकी वही चाल वही अदा थी, न रुकता न किसी से बात करता। एक तरफ से बागीचे में दाखिल होता, सीधा कूलर की तरफ जाता, बर्तन में पानी भरता और दूर अगले गेट की तरफ चल देता। एक रोज मुझे ख्याल गुजरा कि भला ये क्या बात हुई कि वो अपने घर से आते हुए करीबी गेट से बागीचे में दाखिल होता है, मगर जाते हुए दूर वाले गेट से निकलता है और एक लंबा चक्कर काट कर वापस जाता है। एक रोज मैं मामूल से कदरे देर से बागीचे की तरफ जा रहा था कि वो मुझे सामने से आता हुआ नजर आया। वो पानी लेकर लौट रहा था। हमारी नजरें मिली तो वो खिलसा गया। वो मेरी तरफ लहरा कर आया और झुककर सलाम किया। मैंने उसका मसाफे के लिए बड़ा हुआ मटियाला हाथ थाम लिया और कहा, कहो अब क्या हाल है। उसने जरा गर्दन उठाई और एक उंगली आसमान की तरफ सीधी की और कहा, खुदा का बड़ा करम है, रब की बड़ी रहमत है।
उसके लहजे की तवानाई और यकीन की शिद्दत से मैं चौंक सा गया। मुझे ऐसे लगा जैसे अपनी फसल ठिकाने लगाने के बाद हवारियों में बैठे किसी चौधरी ने हुक्के का एक कश लेकर दिखावे की खातिर अल्लाह का शुक्र अदा किया हो, मगर मेरे सामने खड़े आदमी के लहजे में महज दिखावा नहीं, एक रचाव सा था, जैसे उसकी जुबान बनी ही शुक्र अदा करने के लिए हो। मैं दिल में बेमजा हुआ, जैसे उसके इस कलाम के सामने मेरा तस्बीह पे विर्द एक सतही सी बात हो। मैं तस्बीह को मुट्ठी में दबाकर उसके मटियाले हुलिये का जायजा लेने लगा। मैंने सोचा ये मटियाला जरूर है, मगर कोई इसे गंदा नहीं कह सकता। खुदाया, ये घिसे हुए खाकी मटियाले कपड़ों के अलावा कोई और कपड़े क्यों नहीं पहनता। तबा से वो बेपरवाह लगता है जैसे उसे हर चीज मयस्सर हो, जैसे उसे किसी चीज की जरूरत ना हो। इसी इसना में उसने मुझे रुखसती का सलाम किया और लहरा कर आगे निकल गया।
एक रोज मैं बागीचे में ऐसे हिस्से में खड़ा था जो उसके वापसी के रास्ते के करीब था। उसने मुझे देखा तो हंसते हुए मेरी तरफ लपका। उस घड़ी मेरी तबा भी कदरे फराख थी। मैंने छूटते ही सवाल किया, चौधरी ये क्या बात हुई, इस तरफ से आते हो और लौटते हुए उस तरफ इतना लंबा चक्कर काट कर वापिस जाते हो। वो एक अदा से हंसा, फिर मेरी तरफ कदरे झुका और होंठ संवारे जैसे कोई राज की बात कहने लगा हो। वो धीमे लहजे में बोला,
जनाब जब बंदा बाहर निकलता है तो 100 सज्जन 100 दुश्मन, ये भी एक चाल है कि इधर से आओ उधर से आओ, किसी को समझ ही ना आए कि मामला क्या है, समझ गए ना आप। बात खत्म करते हुए उसका लहजा फिर तवाना हुआ तो वो हंस दिया। मैंने भी हंसने में उसका साथ दिया, जैसे उसने कोई मार्फत की बात की हो और मैं समझ गया हूँ। मैंने उसकी तलिस्माती बात के असर से निकलने की खातिर कहा, तुम हो कहाँ के। बूरे वाले के पास एक गांव है जनाब, मेरा घर वहां पर है। कोई घर वाले हैं? हाँ जी, बीवी है, लड़की है, लड़का है। उसके मटियाले हुली और नातवां बदन से निकलते हुए कव्वी लहजे से मुझे उकताहट सी हुई। मैंने कदरे चिढ़कर पूछा, तो यहाँ क्या करते हो? करना क्या है जी, वक्त गुजारना है, वो गुजर रहा है। सामिन, इस खूबसूरत कहानी का बकिया हिस्सा हमें आपकी समातों की नजर करना है। प्रोग्राम में अभी वक्त है एक छोटे से वक्फे का, तो कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर हुए।
दोस्ती रेडियो वेरितास एशिया की उर्दू सर्विस है, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं अदब खजाना।
सामिन, हम आपकी समातों की नजर कर रहे हैं एक खूबसूरत कहानी जिसका उन्वान है आईना, और ये कहानी जो है इश्फाक कुरैशी के कलम का शाहकार है। अब समात फरमाइए इस कहानी का बकिया हिस्सा।
उसकी ये बात फिर मुझे कोई मार्फत की बात लगी, मैं लाजवाब होकर कुछ ना बोला। रिफत के लम्हे से निकलने की खातिर मैं उसके मटियाले कपड़े, मटियाले खिचड़ी, बाल देखकर सोचने लगा, काश जहां ये मुलाजिम है वो इसे कपड़े धोने के लिए साबुन ही दे दिया करें। अच्छा जी, रब राखा, उसने दाया हाथ लहराकर कहा और जाने के लिए पलटा। जरा सुनो, वो मुतवज्जो हुआ तो उसकी नजरों में सवाल ना था, वही हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने भी हाथ लहराकर तमस्कर से कहा, कल यहां से गुजरो तो मुझे जरूर मिलना। कल कोई खास बात है? बस तुम्हारे लिए एक चीज है मेरे पास।
उसने सीने पे हाथ रखा और लहराकर पलट गया। मैं भी मुड़कर क्रिकेट की प्रैक्टिस देखने लगा। चंद लम्हों के बाद मैंने फिर उसी सिमत देखा। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ जा रहा था, जैसे सहरा में ऊंट जा रहा हो, जैसे परेशान हो के गाड़ी न छूट जाए। मेरी तस्बीह तेज होती गई, मेरी तबीयत में बेकरारी सी आई। मैंने सोचा, खुदाया ये किस कैद में मुब्तला है। अगली शाम मैं उसके इंतजार में बागीचे में टहलता रहा। मेरी जेब में 1000 का एक नोट दम साधे पड़ा था। एक मुकालमा रह कर मेरे दिमाग में किलबिला रहा था, ये तुम रख लो, इस दफा घर जाओ तो अपने बीवी और बच्चों के लिए नए कपड़े ले जाना। शाम ने घूंघट दराज कर लिया, मगर वो ना आया। वो उसी ढंग की एक शाम थी।
वो बरकी कूलर से पानी लेकर रवाना हुआ तो हमने एक दूसरे को देखा। वो किसी परिंदे की तरह उड़कर मेरी तरफ आया। उसने लहक कर सलाम किया तो मैंने भी खुश तबई से कहा, क्यों भाई, इतने दिन कहाँ गायब रहे? मैं जी गांव चला गया था। मैंने दिल में सोचा, कैसा बेवकूफ है, उस रोज मुझसे मिल लेता तो गांव खाली हाथ ना जाता। अपना नुकसान भी किया, मेरा मुकालमा भी जाया करवाया। मैंने कदरे तेज लहजे में पूछा, तुम अगले रोज क्यों ना आए? वो कुछ देर सोच में गुम रहा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो सोच से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे उसे कोई बहाना हाथ लगा हो। उस रोज घर गया तो गांव से फोन आया था, बेटी बीमार हो गई थी। उसी रात मैं गांव रवाना हो गया था। ओ अच्छा, क्या उम्र है उसकी? मैंने बेयकीनी से पूछा। खैर से जवान है जी, डॉक्टरी पढ़ती है। मुझे उसकी ये बात पसंद न आई। मैं दिल में हंसा कि यह आदमी क्या बात कर रहा है, जरा कोई इसका हुलिया तो देखे, ये बेटी को मेडिकल क्या पढ़ाएगा। मुझे खामोश देखकर उसने अपनी बात पर गिरा लगाई, उसे जी ऑपरेशन करना भी सिखाते हैं। मुझे फिर उसकी बात हजम न हुई। मैंने दिल की तसल्ली के लिए सोचा, इस गरीब को क्या मालूम, वो जरूर नर्सिंग का कोई छोटा मोटा कोर्स कर रही होगी।
उसकी एक जगह बात भी चलाई है। उसने आहिस्तगी से कहा, मुझे जैसे राजना बना रहा हो। क्या रिश्तेदारों में? नहीं जी, वो एक दूसरे गांव के हैं। लड़का फौजी जवान है। वो कहते हैं लड़की बेशक पढ़ती रहे, बस निकाह करा दे। निकाह ही क्यों, रुख्सती क्यों नहीं? निकाहनामा हो तो फौजी को अलाउंस ज्यादा मिलता है, तो क्या उसे अलाउंस की फिक्र है? वो जी हमारा क्या जाता है, लड़की और पढ़ती रहेगी। क्या तुमने लड़के को देखा है? नहीं जी, मैंने अभी उसे नहीं देखा। क्या मतलब, बेटी का रिश्ता करते हो और लड़का नहीं देखा? जी फौजी जवान का क्या देखना, क्यों, फौजी तो फौजी होता है। उसकी ये बात मेरे दिल में पैवस्त हुई। मैंने सोचा कि ये उसने एक और मार्फत की बात कही है, ये या तो बेहद सादा आदमी है या परले दर्जे का बेवकूफ है। मेरे दिल ने कहा, ये सादा आदमी है। शायद में मीर तकी मीर का एक मिसरा जहन के गोशे में कॉम्पल की तरह फूटा, कितने सादा हैं मीर, बीमार हुए जिसके सबब। मैं दिल में महसूस हुआ, फिर पेशतर इसके कि मिसरे सानी जहन के दरीचे से झांकता, मैं तखैयुल के किसी और गर्दाब में जा गिरा। और इस एतबार से वो लाठी और भैंस वाला पुराना मुहावरा एक नए लिबास में सामने आ चुका है। جس کی بندوق اس کی حکومت، اسی کی عدلیہ، اس کی مکننہ، اسی کا دستور۔
اس لمحے میں اپنی اس آوارہ خیالی پر ہنس دیا۔ میرے سامنے کھڑے سادہ لو شخص کے چہرے پر حیرت تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، فوجی کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک شام وہ مجھے سڑک پر سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ 1000 روپے اس کی امانت ہے، مجھے اسے دے دینے چاہیے۔ کیا خبر وہ گاؤں کب چلا جائے۔ مجھے مسجد کی سمت جانا تھا، اس لیے اس کے انتظار میں وہیں رک گیا۔ وہ قریب آیا تو میں آہستگی سے مسجد کی طرف چلنے لگا اور اسے کہا، کل شام اس وقت سے ذرا پہلے مجھے باغیچے میں ملنا۔ اس نے مجھ پر مسکراہٹ نچھاور کی اور باواز بلند کہا، ضرور آؤں گا جی۔ اگلی شام میں باغیچے میں معمول کے مطابق ٹہلتا رہا، وہ کہیں نظر نہ آیا۔ میری جیب میں طے شدہ 1000 کا نوٹ پڑا رہا۔ میں نے سوچا، خدایا کیا یہ اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو میں مسجد کو روانہ ہوا۔ اگلی شام میں مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو وہ مجھے دکھائی دیا۔ اس کی وہی اونٹ کی سی چال تھی۔ وہ ذرا قریب آیا تو میں نے زچ ہو کر کہا، کل شام تم مجھے ملے کیوں نہیں؟ وہ کچھ شرمسار ہوا اور خاموش رہا، جیسے کوئی بہانہ سوچ رہا ہو۔ پھر ایک دم توانا لہجے میں بولا، کل وہاں ضرور آؤں گا جی۔ نہیں، پرسوں، اتوار ہے، صبح کسی وقت میرے گھر آنا۔ میرے لہجے کی بے پرواہی سے وہ کچھ پریشان ہوا۔ میں نے جانے کے لیے قدم آگے بڑھایا اور کہا، میرے گھر کا نمبر 92 ہے۔
اچھا جی، 92 نمبر۔ اس نے یاد رکھنے کے لیے نمبر دہرایا۔ میں نے اس کی طرف نہ دیکھا اور چلتے چلتے خود کلامی کی، اب سزا کے طور پر 1000 کی بجائے 500 روپے دوں گا۔ اتوار کی صبح وہ میرے گھر پہنچ گیا۔ ایک روز پہلے میں نے پروگرام کے تحت اس کے لیے 300 روپے میں شلوار قمیض کا کپڑا خریدا تھا۔ میں کپڑے کا پیکٹ اٹھا کر اور 200 روپے جیب میں ڈال کر گیٹ سے باہر نکلا۔ وہ اسی طرح ملگجے لباس میں تھا۔ میں نے تمہیدی باتوں کے بعد پیکٹ اس کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ شلوار قمیض کا کپڑا میں نے تمہارے لیے لیا ہے، یہ تم رکھ لو۔
اس کے چہرے پر خوشی کا ایک رنگ آیا۔ اس نے لہک کر پیکٹ پکڑ لیا اور کہا، او حجی، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے اپنی جیب سے 200 روپے نکالے اور اس کی جیب میں ڈال کر کہا، یہ 200 روپے بھی تم لے لو۔ وہ مزید خوش ہوا، پھر ٹھٹکا۔ چل ہمیں کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اس سے بہتر تھا کہ تم مجھے جوتے لے دیتے۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی نہ لگی۔ مجھے خیال گزرا کہ یہ پھیلنے لگا ہے۔ میں نے اس کے پاؤں کی جانب دیکھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے ہمیشہ اس کے مٹیالے کپڑے، مٹیالا چہرہ اور بازو ہی دیکھے۔ اس کے پاؤں کی طرف کبھی نظر نہ گئی۔ اس کے جوتے اور پاؤں ایک ہی جیسے تھے، دونوں بدرنگ، دونوں بے حال۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ غالب کے چاک گریباں کی کیا حالت ہوگی کہ ایک بار وہ کہہ اٹھا، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ میرا دل چاہا کہ اس اونٹ جیسی چال والے سے کہہ دوں، تمہارے پاؤں کو جوتے کی کیا حاجت ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گیٹ کے اندر لے آیا۔ میں نے باغیچے میں پڑی لوہے کی کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم بیٹھو، میں ابھی آیا۔ گھر کے اندر جا کر میں نے پرس سے 100 روپے کا ایک لوٹ لیا اور باہر آ کر اس کی جیب میں ڈال دیا۔ میں نے ترنگ میں کہا، لو جاؤ، جوتے بھی لے لینا۔ اس نے میتھ مسکرا کر دیکھا اور کہا، حاجی، 300 روپے میں جوتے آتے ہیں؟ میں دل میں ہنسا اور اسی لہر میں سوچا، مجھے معلوم ہے کہ نہیں آتے، مگر میں نے تو تمہیں 500 روپے دینے کی ٹھان رکھی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا؟ اس کی تمنا پھیل رہی ہے اور میرا دل سمٹ رہا ہے۔ میں نے اسے ایک تسلی بخش اشارہ کیا اور اٹھ کر پھر گھر کے اندر گیا۔ میں نے اپنے جوتوں میں سے 2 جوڑے اٹھائے اور باہر آیا۔ میں نے جوتے اس کے آگے رکھے اور کہا، یہ جوتے ہیں، آج کل پہن رہا ہوں، یہ میرے پاؤں میں قدرے بڑے ہیں۔ یہ دوسرا جوڑا بالکل نیا ہے، یہ جوتے میں نے حج کے موقع پر مکے سے خریدے تھے، پہن کر دیکھو، جو پورے آئیں وہ لے لو۔
وہ کرسی پر بیٹھا جوتوں کو دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ مجھے نہیں آئیں گے، میرے پاؤں کا نمبر 10 ہے۔ اچھا، میرا نمبر تو 8 ہے۔ وہ خاموش بیٹھا جوتوں کو دیکھتا رہا۔ میں نے اکتا کر جوتوں کو سمیٹتے ہوئے کہا، چلو چھوڑو، رہنے دو۔ اس نے نئے جوتوں پر ہاتھ رکھا اور حسرت سے کہا، یہ میرے چھوٹے کو پورے آئیں گے۔ میں نے دل میں سوچا، لو اب خود کو بھول گیا اور بیٹا یاد آ گیا۔ میں نے بات ختم کرنے کی خاطر کہا، ٹھیک ہے، لے لو، اپنے بیٹے کو دے دینا۔ اگلے چند لمحوں میں ہماری مجلس برخاست ہوئی۔ میں نے اسے رخصت کر کے گیٹ بند کیا اور اندر جانے کے لیے پلٹا تو باہر سے آواز آئی، حاجی، تم بھی کہو گے، آیا تھا اور جفا ہی مار لیا۔ میں نے گیٹ کھول کر کہا، अब क्या है, तुम भी कहोगे इसने जफ्फा ही मार लिया। क्या मतलब? उसने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, जब जूते ले लिए तो अब इस नोट पर मेरा हक नहीं।
जी दोस्त, आपने कहानी समाप्त फरमाई और इस कहानी में जो छुपा पैगाम है वो भी मेरा ख्याल है कि आप तक जरूर पहुंच गया होगा। जी दोस्त, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा।
और सामिन, इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, तो कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर हुए।
दोस्ती रेडियो वेरितास एशिया की उर्दू सर्विस है, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं अदब खजाना।
सामिन, वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर खिदमत है और आपकी समातों की नजर करते हैं। वहीद अहमद जमान की एक खूबसूरत गजल समात फरमाइए। हमारी आंख में जितने भी ख्वाब रखे थे, बनामे ख्वाब किसी ने अजाब रखे थे।
वाह वाह।
हमारी आंख में जितने भी ख्वाब रखे थे, बनामे ख्वाब किसी ने अजाब रखे थे। हमारी राह में कांटे बिछाने वालों ने हमारे हाथ पे कितने गुलाब रखे थे।
वाह जी वाह, क्या बात।
हमारी राह में कांटे बिछाने वालों ने हमारे हाथ पे कितने गुलाब रखे थे।
क्या बात।
हमारे दिल को कहां मिलना था करार कहीं, कदम कदम पे यहां इज़्तिराब रखे थे।
बहुत खूब।
हमारे दिल को कहां मिलना था करार कहीं, कदम कदम पे यहां इज़्तिराब रखे थे। हमें मिला जो भी सब कुछ नजर का धोखा था, हमारी ज़िस्त में हर सू शराब रखे थे।
वाह वाह।
हमें तो इतनी खबर है कि तुमको चाहा था, कहां नजर में गुनाह सवाब रखे थे।
वाह वाह।
हमें तो इतनी खबर है कि तुमको चाहा था, कहां नजर में गुनाह हो सवाब रखे थे। हम अपने दिल में जिधर भी नजर उठाते थे, तुम्हारे नाम के गम बेहिसाब रखे थे।
क्या बात।
और हमारी आंख में जितने भी ख्वाब रखे थे, बनामे ख्वाब किसी ने अजाब रखे थे।
भाई वाह, क्या बात है।
अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, तो आइंदा हफ्ते तक के लिए अपने मेजबान आमिर सुहेल और यूनस सनी को इजाजत दें।
Radio Veritas Asia।